विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय अलम्बोत्तराय शुक्लाय च जगत्पिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमः नमस्ते। अब ये जो है ना जीवों का छह प्रकार का भेद दस्या ना कल, केड़ा केड़ा जीव ईश भेद तीन माया ब्रह्म भेद साठ जे अनादि तामे ब्रह्म अनंत मानिए विचार चंद्र उदय की ओचाया सी जीव ईश भेद तीन ब्रह्म माया रुस बंद इतनी आए ये मैं तेन विचार चंद्र उदय सुना रहा ये ग्रंथ च नहीं है। जीव ईश भेद तीन जीव और ईश्वर और जीव ईश्वर का आपस में भेद तीन ए है ना और ब्रह्म और माया और ब्रह्म माया का संबंध छठ जे अनादि तामे ब्रह्म अनंत मानी विचार चंद्र उदय इस किन्ने दसे है ये पांच प्रकार के भेद है भ्रांति जी है वो दसी है ठीक है ना केड़े केड़े है जीवों का परस्पर भेद जीव ईश्वर दोनों का परस्पर भेद दो घटादि के जड़ पदार्थों का परस्पर भेद तीन ईश्वर का तथा जड़ का परस्पर भेद जीव का तथा जड़ जड़ जगत का परस्पर भेद इस प्रकार जीव ईश्वर आदि के रूप प्रतियोगियों के भेद के भेद करके ते भेद पंच प्रकार का होवे है ये पांच प्रकार की भ्रांति होगी ठीक है जी ते सर्व भेद कल्पित है कैसे सब कल्पना कर रखी कल्पित है ब्रह्म विच जाते तीन पंच भेदों ते जो रहित पना है ब्रह्म विषय संभव है वही जरा ब्रह्म के विषय क्यों संभव रहा है की कह रहे ये पांच भेदों से जो रहित पना है ना वो ब्रह्म विच है क्यों है क्योंकि बाकी वस्तु कल्पित है वो कल्प कोई सत वस्तु हुए तो वही तो भेद करेगी ये तो सत है ही कोई नहीं मिथ्या है ठीक है ना। अथवा दूसरा प्रकार से ले लो सजाती या भेद विजाती या भेद स्वगत भेद ये तीन प्रकार का भेद है केड़ा सजाती विजाती स्वगत इन बंद कर देना ठीक है चल तीन प्रकार का भेद है ना सजाती विजाती स्वगत सजाती मैंने जैसे ब्राह्मण है ब्राह्मण का ब्राह्मण के नाल भेद ये ब्राह्मण अलग है ये ब्राह्मण अलग है तो जाति एक ही ब्राह्मण तो ब्राह्मणपना दोनों जी है तो अलग अलग नहीं है ये ब्राह्मण अलग है वो ब्राह्मण अलग है वो ब्राह्मण का क्षत्रिय नाल भेद जाति भेद हो गया ये ब्राह्मण का ब्राह्मण नाल भेद केड़ा हो गया सजाति भेद और ब्राह्मण का क्षत्रिय नाल भेद जाति और ब्राह्मण का शरीर का अपने अंगा नाल भेद स्वगत भेद अपने में जो भेद हो ये तीन प्रकार का भेद है इन तीन भेदों ते जो रहित होवे ताका नाम अद्वे है ये तीन प्रकार दे भेद जे दे विच ना होण उनू की कहोगे अद्वे अद्वे मैंने द्वैत से रहित दूसरा कोई नहीं है उहदे विच भाई ब्रह्म दे थोड़ी ये दसो ब्रह्म विच क्यों नहीं है तीनों सजाती विजाति सुगत ब्रह्म दे विच इस वास्ते नहीं है ब्राह्मण दे नाल दूसरा ब्राह्मण है तो हो गया सजाती भेद और ब्राह्मण ब्रह्म दो चार होण तो ब्रह्म दा ब्रह्म दा भेद हो जाए वो तो ब्रह्म ब्रह्म तो एक ही है तो उहदे नाल सजाती भेद कितना हो जाएगा ठीक है तो फिर विजाती विजाती ब्रह्म नूं छड्ड के कोई सत वस्तु है ही नहीं सारी वस्तु कल्पित है तो ब्रह्म दे नाल फिर भेद कितों हो जाऊगा स्वगत भेद होंदा अवयव दा ब्राह्मण है उदा ब्राह्मण का शरीर है, हाथ उदा अवयव है, पैर अवयव है, ब्रह्म तो ऐसा नहीं है, तो निराकार है, उदा अवयव कितों आ जाएंगे। इस वे स्वगत भेद भी नहीं उदे विच होदा, सजाति भेद नहीं है ब्रह्म दे विच, जाति भेद नहीं है, स्वगत भेद भी ब्रह्म दे विच नहीं है, इसलिए उनकी कहते हैं अद्वय। सो ब्रह्म की अद्वैत रूपता एकमेवा द्वितीयम, ये श्रुति भी दस रही है, इत्यादि की श्रुति प्रमाण करके ही सिद्ध है एकमेवा द्वितीयम। शंका, पूर्व अज्ञान आदि जड़ समूह को अचेतन कहया। अब शंकावादी शंका कर रहा है, वो कह रहा है पहला तुसी की क्या सी, अज्ञान आदि जड़ समूह, जड़ समूह मैंने प्रपंच जड़ा है, इनू की क्या अचेतन कहया। तहां तहां अज्ञान का स्वरूप क्या है तथा लक्षण क्या है तथा प्रमाण क्या है, ऐसी शंका के प्राप्त हुए अब जथा क्रम ते अज्ञान के स्वरूप को तथा लक्षण को तथा प्रमाण को निरूपण करें। अब अज्ञान का दस रहे हैं, असली साढ़े जम्मन मरण का कारण की है अज्ञान, जेड़ा आपां 84 दे चक्कर च पए हैं ना, तो 84 दे चक्कर च सानू पाया किने अज्ञान ने, 84 दे चक्कर विच सानू पाउण वाला एक अज्ञान ही है, ते ए अज्ञान किहदे नाल खत्म होएगा, ज्ञान दे नाल। ते एक कमरे दे विच अंधकार है, गुप अंधेरा है, तो अंधकार जिहड़ा अंधेरा किदां दौड़ूगा, जदों आपां प्रकाश दीपक चलावांगे, अंधकार का विरोधी कौन है, प्रकाश है, उदों तो दौड़ ही नहीं सकता, कमरे च अंधकार है, तुसीं डांगा मारी जाओ दौड़ जूगा किते, मंत्र जपन लग जाओ, जग करने लग जाओ, पाठ करने लग जाओ, अंधेरा दौड़ जे नहीं जाएगा, कईआं लै के बाल्टे लै के भर भर के टोकरे बाहर सुट्टी जाओ, वो नहीं जाएगा, उहदे जाण दा सिर्फ एक ही साधन है क्या, प्रकाश, एक माचिस दी तीली जला दो, दीपक जला दो, अंधकार का पता ही नहीं लगेगा, यही हाल अज्ञान का है, ये जिहड़ा साडे जम्मण मरण दा मुख कारण अज्ञान है, ये दौड़ेगा किदां, ज्ञान दे नाल, मुक्ति किदां होगी, ज्ञान दे नाल, इस वास्ते आपां जिहड़ा ये पढ़ रहे हैं ज्ञान वास्ते। अब वो जिहड़ा अज्ञान है जिन्हें सानू बंधन च पा रखिया, जिहड़ा साडा जम्मण मरण दा मुख कारण है अज्ञान, अब वो की चीज है, ये पूछ रहा उन्हूं, ठीक है ना। अब वो कह रहा है, अब जथा कर्म ते ता अज्ञान के स्वरूप को, अज्ञान का स्वरूप क्या है तथा अज्ञान का लक्षण, अज्ञान का लक्षण क्या है तथा अज्ञान का प्रमाण क्या है, ये तीन चीजा निरूपण करे है। तहां सो अज्ञान त्रिगुणात्मक है, त्रैगुणात्मक अज्ञान है, त्रैगुण मैंने सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन गुण जो है ये स्वरूप है जिसका, ये तीन गुण जिसका स्वरूप है उन्हों की कहेंगे अज्ञान, ठीक है ना। अर्थात सत रज तम जे तीन गुण है आत्मा कहिए स्वरूप जिसके, समझिए, अर्थात सत रज तम, सत मने सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जे तीनों गुण है आत्मा कहिए स्वरूप जिसके, ऐसा त्रिगुणात्मक अज्ञान है, तहां अज्ञान के कार्य भूत जगत विषय सुख दुख मोह रूपता प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है। अंधे भी जेड़ा अज्ञान का कार्य है वो केड़ा है, ये संसार, अज्ञान का, अज्ञान तो हो गया कारण, बीज उहदे तो पौधा केड़ा बनया, संसार रूपी पौधा बनया, ठीक है। कहिंदा संसार जेड़ा पौधा है, जेड़ा संसार वृक्ष है, इहदे विच वी सुख दुख मोह दिखाई नहीं दे रहे, ते इह कित्थों आए, अज्ञान तो, इह सुख तो कित्थों आए, सतोगुण सो सत्वा संजायते ज्ञान, सतोगुण से सुख प्राप्त हुंदा है, रजोगुण से रजोगुण क्रिया विच लाएगा, तमोगुण आलस विच लाएगा, इहो दस रहे हैं। सुख दुख मोह, सुख किहदा कम है, सतोगुण दा, और दुख रजोगुण दा, ते मोह तमोगुण दा, मोह दे विच जदों बंदा पै जांदा है, पुत्र मोह जां कोई मोह, फिर उन्हूं पता नहीं लगता भी मैं की कर रहा, फिर वो अपना जिहड़ा अग्गा है ना, मैं किथे जाना, कहदे वास्ते, ये भी भुल जांदा, पुत्रां पिछे अज्ञान है ना, वो तमोगुण का तमोगुण का कार्य क्या है? सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवचा परमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानम एवचा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सत्वा संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान होगा, ठीक है, और रजसो लोभ एवचा, रजोगुण ना की होगा लोभ, जिहड़ा लोभी पुरुष होगा ना समझो उसके रजोगुण ज्यादा है, ठीक है, और तमोगुण का कार्य की है निंद्रा आलस प्रमाद। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवचा परमाद मोह तमसो भवतो ज्ञान एवचा। प्रमाद और मोह ये किदे काम है? तमोगुण दे। एक ही कह रहे हैं सुख सतोगुण दा, दुख रजोगुण दा, मोह तमोगुण दा। रूपता प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है और ते सुख आदिक तीनों यथा क्रम ते सत्वा आदिक तीन गुणों के ही परिणाम हो गए, ठीक है, और कारण के समान स्वभाव वाला ही कार्य हो गया। जैसा कारण होगा
उसी कार्य
ऐसे ही कार्य हो, ये प्यो चंगा पला है, सतोगुणी है, शांत स्वभाव है, तो संतानवी ऐसी होगी, है ना, तो जब प्यो ही उल्टा सीधा काम करता तो संतान तो उदा ही निकलूगी। हाँ, ये करके वो कह रहे जैसा कारण होगा। हुण तुसीं ये देख लो कारण क्या, मिर्च का बीज है, ठीक है ना, उहदे च की बैठा है वा, कड़वापन बैठा है, वो जिथे मर्जी ला दो, भावें इत्थे ला दो, उत्थे ला दो, उत्थे ला दो, अमृतसर ला दो, जलंधर ला दो, बठिंडे ला दो, उहने अपना सुभाअ नहीं छड्डना, उहदे संस्कार ऐसे पए आ। ऐहे जीव का हाल है, जीव की बुद्धि दे विच जैसे संस्कार पै जांदे आ उह नहीं निकलदे, वो चाहे चंगे होने चाहे माड़े हो, इसलिए संस्कार चंगे ही पाने चाहिए। जाते जगत रूप कार्य विषय त्रिगुण रूपता को देख के कारण भूत अज्ञान विषय भी सो त्रिगुण रूपता कल्पना करी जावे है। कहता जो संसार दे विच त्रिगुणा देख रहे हैं, तीन गुणा वाला संसार है, ये विच की है सुख है दुख है मोह है, तो तमोगुण रजोगुण का भी यही कार्य है, अज्ञान चो निकला गया है, वो तो कल्पना कर ली कि बापा ये ज्ञान का काम है, ठीक है। अजामे कालम, देखो की कह रहा, अजाम एक एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ठीक है, ये की कह रहा है, सुरती की कह रही है, यह सुरती भी ता अज्ञान को त्रिगुण रूप कहे है, जरा अज्ञान है ना इन सुरती भी कह रही है, की कह रही है, ये त्रिगुणात्मक है। देखो ना अज्ञान का स्वरूप क्या है, लोहित शुक्ल कृष्णा, लोहित मैने लाल, शुक्ल मैने सफेद, कृष्ण मैने काला, तमोगुण की केड़ा रंग देता काला, इसलिए त्रिगुणात्मक है ये अज्ञान। इतने करके अज्ञान का स्वरूप कहया, ये अज्ञान का स्वरूप हो गया केड़ा, अज्ञान का स्वरूप केड़ा क्या हमने, त्रिग रजोगुण सतोगुण तमोगुण स्वरूप है जिसका, ऐसा जो ऐसे स्वरूप वाला जो है उनको कहते हैं अज्ञान, ठीक है ना। अब ता अज्ञान का लक्षण कहे हैं, अब अज्ञान का लक्षण दस रहे हैं,
रजोगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण स्वरूप है,
हाँ अज्ञान का, मतलब जिदा सत चित आनंद ब्रह्म का स्वरूप है, सत चित आनंद के स्वरूप है ब्रह्म का, ऐसे ही ये अज्ञान का की स्वरूप हो गया, हाँ सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ए मत समझ लेना कि सतोगुण चंगा है, वो भी अज्ञान में ही है, इस वास्ते कहते ना त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणों बवर्जना, हे अर्जुन ये जो तीन गुण है ना ये संसार नू प्रकाशित कर रहे, संसार दे विच है, मतलब तो जे तू संसार तो उपर जाना है तो निस्त्रै गुण पर रजना, तिना गुणा तो उपर चलेगा तो संसार तो उपर चल जाएगा, चौथा पद आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब अज्ञान का लक्षण कहे हैं, अब अज्ञान का लक्षण कहन लगे हैं, असद सद लक्षणम अज्ञानम, की कह रहे हैं, सद असद विलक्षणम अज्ञानम, संधि विच्छेद करोगे तो ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सद फिर असद, दजे दे पैर जे ववा है ना वो इधर आ जाएगा, विलक्षणम अज्ञानम, की अर्थ होया जो सत और असत ते विलक्षण है ना उनू तुसी सत कह सकते जे ना उनू असत कह सकते जे, ऐसी जड़ी वस्तु है उनू कहांगे अज्ञान, सत क्यों नहीं कह सकते, भी सत कहांगे तो सत ब्रह्म है, तुझे असत कहांगे, असत कहांगे तो फिर असत जड़ी वस्तु है वो तो बंदे का पुत्र या शशर सिंह होंगे, बंदे का पुत्र जानते देखा कहे ने कभी बांझ जिन्हू कहते बई, बंदे मैंने बांझ, बांझ का पुत्र होंगे कभी, आकाश का फुल होंगे, शायद सिंह होंगे, जिहड़ी है ही नहीं, जिहड़ी चीज है ही नहीं वह प्रतीत कैसे होएगी, जे असत कहो गया ज्ञान तो प्रतीत हो रहा है संसार सतोगुण रजोगुण ये स्वरूप दिखाई दे रहे तमोगुण तो फिर प्रतीत नहीं होना चाहिए, जे सत कहो गए तो सत तो ब्रह्म है, सत हाँ सत असत से विलक्षण, ना सत कह सकते ना असत कह सकते, वो ज्ञान का लक्षण हो गया, ठीक है ना, अब इन कटेंगे थोड़ा थोड़ा फिर इन शोध करके अज इन कसौटी चढ़ाएंगे ना, सत असत से विलक्षण जो होवे उहदा ज्ञान दा जय अर्थ जय है सत पदार्थ से तथा असत पदार्थ से जो विलक्षण होवे सो अज्ञान कहया जावे है, अर्थात जिसका सत्य स्वरूप करके तथा असत स्वरूप करके निरूपण नहीं हो सके, ना उन्हूं सत कह के तुसी दस सकते जे ना असत कैसे कह के दस सकते जे, जे सत कह के दसोगे तो फिर द्वैत हो जाएगा, वो फिर अज्ञान से निवृत्त नहीं होगा, ज्ञान से जे अज्ञान सत हो गया तो ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा, जे अज्ञान तुसी सत कहोगे तो फिर जेड़ा अज्ञान है वो ज्ञान दे नाल निवृत्त कैसे होगा, ठीक है, जे असत कहोगे तो फिर असत ते बंदे दा पुत्र हुंदा वो दिखाई नहीं दिंदा, प्रतीति नहीं हुंदी उहदी, ये तो प्रतीति हो रही है संसार दिखाई दे रहा, इसलिए ना उन्हूं सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं, सत असत से जो विलक्षण है ना वो अज्ञान है, ठीक है, सो अज्ञान कहा जावे है, तहां अज्ञान को जो सत मानिए तो जो सत ब्रह्म की न्यायी ता अज्ञान का नाश
नहीं
ना की है
नहीं
नाश ना इसे एक लाओ डंडा
नहीं
नहीं वो तो प्रधान जी ठीक है, ये जो है ना जो सत ब्रह्म की न्यायी ता अज्ञान, ऐड़े नू एक डंडा और ला दो, हाँ जी ता अज्ञान बनेगा ना पूरा, अज्ञान का नाश नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं जे तुसी अज्ञान नू सत मनोगे, ठीक है, ब्रह्म की तरह ते उदा ब्रह्म ज्ञान दे नाल बाद नहीं होना चाहिए, फिर बाद नहीं होएगा, और ब्रह्म ज्ञान करके ता अज्ञान का नाश हो जावे हैं, जाते सो अज्ञान सत रूप करके भी निरूपण करया जावे नहीं, और ता अज्ञान को जो असत मानिए, जे असत मानिए दूजा पक्ष ले लो, तो असत बंध्या पुत्र की न्यायी ता अज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, जैसे बंध्या का पुत्र नहीं हुंदा, शहद सिंह नहीं हुंदे, आकाश का फुल नहीं हुंदा, मरुस्थल में जल नहीं है,
ये प्रत्यक्ष हो
रहे है, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना, तो फिर की होया ना सत है ना असत है, और जो अज्ञान ते मैं देखो और सो अज्ञान तो मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, अज्ञान तो प्रगट हो रहा है अपने आप ही जीव जेड़ा है ना वो प्रगट कर रहा है, और सो अज्ञान तो मैं ब्रह्म को नहीं जानू हूं, जहां प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव का विषय हुआ ही अनुवर्चनीय है ना प्रतीत हो गए हैं, की कह रहे हो, वो कह रहे बंदिया के पुत्र का प्रत्यक्ष अनुभव हुंदा नहीं हुंदा, ये हो रहा है कैसे, मैं ब्रह्म नहीं जानता, ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਅਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੂਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਦੀਪਕ ਦੇਖਿਆ ਜਲਾ ਕੇ, ਦੀਪਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ? ਅਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੀਪਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚ ਕੁੱਪਾ ਹਨੇਰਾ, ਛੋਟਾ ਬਲਬ ਜਲਾ ਤਾ ਜੀਰੋ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ? ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਜਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਲਾਤਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੋ ਅਗਿਆਨ ਸੱਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਕੋ ਅਨਰਵਚਨੀ ਕਹੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਅਨਰਵਚਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਦ ਵਿਲੱਖਣ ਅਗਿਆਨਮ, ਅਬ ਉਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਦ ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸਦ ਵਿਲੱਖਣ ਅਗਿਆਨਮ, ਜੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਲਕਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ, ਸਦ ਅਸਦ ਸੇ ਵਿਲੱਖਣ, ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਸਦ ਅਸਦ ਸੇ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਗਾ ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਦ ਵਿਲੱਖਣ ਅਗਿਆਨਮ, ਇਤਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਜੋ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਕਾ ਲਕਸ਼ਣ ਕਰਤੇ ਤੋ ਬੰਧਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿਕ ਅਸਤ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ, ਸੋ ਜੋ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਲਕਸ਼ਣ ਕੀ ਅਤੀ ਵਿਆਪਤੀ ਹੋਤੀ। ਤਾਂ ਅਤੀ ਵਿਆਪਤੀ ਦੋਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੇ ਸਦ ਵਿਲੱਖਣ ਜਹ ਪਦ ਕਥਨ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਤ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤ ਵਿਲੱਖਣ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਆ ਹੋਗਾ? ਸੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੀ ਵਿਆਪਤੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਦ ਵਿਲੱਖਣ ਅਗਿਆਨਮ, ਇਤਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਜੋ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਕਾ ਲਕਸ਼ਣ ਕਰਤੇ ਤੋ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਜੋ ਬੰਧਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿਕ ਅਸਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਣ ਕੀ ਅਤੀ ਵਿਆਪਤੀ ਹੋਤੀ। ਤਾਂ ਅਤੀ ਵਿਆਪਤੀ ਦੋਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸਦ ਵਿਲੱਖਣ ਜਹ ਪਦ ਕਥਨ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਧਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿਕ ਅਸਤ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਧਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਸਹਿ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਦ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸਦ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨੋ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੀ ਵਿਆਪਤੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵਾਸਤਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੋ ਅਬ ਠੀਕ ਸੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਸਤਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਦ ਵਿਲੱਖਣ ਅਗਿਆਨਮ, ਇਤਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਕਾ ਲਕਸ਼ਣ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ਣ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸਦ ਵਿਲੱਖਣ ਅਗਿਆਨਮ, ਸੱਤ ਤੇ ਜੋ ਪਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਕਾ ਲਕਸ਼ਣ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸਤ ਜਹ ਪਦ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ? ਜੋ ਕੋਈ ਅਸਤ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਤੋ ਤਾਂ ਕਾ ਅਸਤਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਤੀ ਅਸੱਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਅਸੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਅਤੀ ਵਿਆਪਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਸੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਅਸੱਤ ਵਸਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਕਸ਼ਣ ਕੀ ਅਤੀ ਵਿਆਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਵਸਤੂ ਅਸੱਤ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਕਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਹੋਊ? ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਕੇ ਲਕਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸਦ ਵਿਲੱਖਣ ਜਹ ਜੋ ਪਦ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਆ ਹੈ सो केवल शिष्यों के बुद्धि की वृद्धि वास्ते दिया है। शिष्य जड़े है उन्होंने बुद्धि जी वृद्धि मैंने वाद जाए उन्होंने इन्हें बाकी लक्षण का भी ज्ञान हो जाए। हाँ इन्हें कुछ जोर लाया उन्हें जैसे बस जैसे उसने नहीं क्या निश्चल दास जी ने ये जड़े बाकी लक्षण देते है ना केड़ा लक्षण सी नाम रूप आधार मती ना लिखे जा मत लिखे सो मैं शुद्ध अपार आगे अवधि स्वरूप अपार मम लहरू विष्णु महेश विधि रवि चंदा वर्ण जम शक्ति दनेश गणेश है कृपालु सर्वग को ये धारत मन ध्यान ताको हो तपादी ते मोह में मिथ्या भान आगे है जो जाने बिन जगत मनो जेबरी साप नसे बजंग जग जे लहे सो मैं आपू आप बजंग रस्सी रस्सी अधिष्ठान है सर्प दा अंदा इतना ही मात्र कह देंदे ना तो सारे लक्षण की निवृत्ति हो जानी सी ते बाकी लक्षण क्यों कहे अंदा बाकी लक्षण ते आपे शिष्य नु जरा इन्हां लक्षण का भी ज्ञान हो जाए तां कहे आ उही ये कह रहा है ठीक है ना। अब शंकावादी फिर बोल रहा है जैसे अज्ञान सत ते विलक्षण है ठीक है जैसे अज्ञान सत ते विलक्षण है तैसे जह कार्य प्रपंच भी तां सत ते विलक्षण ही है जाते कार्य प्रपंच विषय ता अज्ञान के लक्षण की अति व्याप्ति हो गए है ठीक है। हाँ वो कह रहा तुसी सद विलक्षण इना कह देता सद से जो विलक्षण है ते वो अज्ञान है ते सद से विलक्षण है प्रपंच भी है अतिव्याप्ति हो जूगी ठीक है ना। अब इसका समाधान कर रहा ता उक्त लक्षण विषय अनादि इस पद के कहने करके सो अतिव्याप्ति होवे नहीं। अब अनादि कह देता ना आदि थी अनादि अनादि ये पद कह देता ते अज्ञान प्रपंच ना उदी अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि प्रपंच प्रपंच अनादि नहीं अर्थात सद विलक्षण अज्ञानम देखो सद विलक्षण सद विलक्षणम अनादि अज्ञानम
अनादि लगा दिया ना
अनादि लगा दिया ना
अज्ञान अनादि है।
हाँ
प्रपंच अनादि
तो भाई हुण तुसी ये दसो ना आपा कह सकते हैं सानू एक जेड़ा असी कदों जीव बने जान सानू चलो इदा कह लो इदा कह लो ये जेड़ा सानू भुलेखा पिया है मैं जीव हूं ये कदों पिया सी कोई पता समय का यही हाल है ये फिर की हो गया अनादि जदों का सृष्टि चली आ रही है चल रहा है इस वास्ते गुरु महाराज ने की क्या है थित वार ना जोगी जाने रुत महाना कोई जा करता सृष्टि को साजे वो ही जानता है इसका कोई अंत नहीं पा सकता ये तो वही जानता है ये तो वही जानता भी सानू भुलेखा कदों का पिया जाते ता प्रपंच विषय ता लक्षण की अति व्याप्ति हो गए नहीं शंका इस उक्त लक्षण की भी जीव ईश्वर विषय अति व्याप्ति हो गए है काहे ते सो जीव ईश्वर कल्पित होने ते सतते विलक्षण भी है तथा अनादि भी है ना। चलो मान लो प्रपंचना नहीं होगी तुसी अनादि पद दे देता सत विलक्षण अनादि अज्ञानम ऐसे कहता अंदा जीव जड़े है वो ईश्वर ये भी सद से विलक्षण है सद से विलक्षण है और क्या है अनादि है कल्पित है और अनादि है इन्हें चल लक्षण दी अज्ञान दे लक्षण दी हो जाएगी अति व्याप्ति तहा जीव जीवे शाह देखो जीव है ना जीव ते एदा संधि विच्छेद कराया तो की हो जाए ईशाऊ जीव ईशाऊ शाऊ मतलब द्वितीय विभक्ति है मतलब दोनों जीव और ईश्वर दोनों जीवे शावा भासे भासे ना करोती ठीक है इस सुरती वचन करके तथा माया भासे ना जीवे शौ करोती ती सुरुतत्वात सुरुतत्वात की कह रहे हैं ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੰਚਦਸ਼ੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਕਲਪਿਤਾ ਦੇਵਾ ਜੀਵੇ ਸ਼ੌ ਤਾਭਿਆਮ ਸਰਵਮ ਪ੍ਰਕਲਪਿਤਮ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਕੇ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਲਪਿਤਪਣਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਦਸ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੰਚਦਸ਼ੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੇ? ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੋਨੋਂ ਕਲਪਿਤ ਹੈ। ਕਲਪਿਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤੇ? ਚਲੋ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕਲਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਿਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੀਵ ਤਾਂ ਕਲਪਿਤ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਿਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਕਲਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਪਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ। ਕਲਪਿਤ ਮੈਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਏਦਾਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਪਈ ਕੰਧ ਤੇ, ਉਹ ਕੰਧ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਲਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਲਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਨੀ ਸੂਰਜ ਨਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਠਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਿਤ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੱਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਚੋਂ ਬਿੰਬ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਜੀਵ ਤੇ ਕਲਪਿਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਹੀ ਉਹ ਮਲੀਨ ਸਤੋਗੁਣੀ ਚ ਪਿਆ, ਮਲੀਨ ਸਤੋਗੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਦਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਜੀਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤੋਗੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਤੋਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨੀ ਕਲਪਿਤ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਲਪਿਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਪਿਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਬਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਣ ਸਤੋਗੁਣੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਲੀਨ ਸਤੋਗੁਣੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵ ਈਸ਼ੋ ਚਾ ਵਿਸ਼ੁੱਧਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਪਿਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਜੀਵੇ ਸ਼ੋ ਚਾ ਵਿਸ਼ੁੱਧਾ ਚਿੱਤ ਚਿਦ ਵਿਭਾਸ ਵਸਤੂ ਵਸਤੂ ਯੋ ਦਯੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਦਾਭਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੀਵ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਵਿਦਿਆਤ ਚਿੱਤ ਉਹ ਯੋਗ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਛਠਸ ਮਾਕਮ ਨਾਦਯਾ, ਅਰਥ ਜੇ ਹੈ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾ ਪਰਸਪਰ ਭੇਦ ਅਵਿਦਿਆ, ਤਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਕਾ ਚੇਤਨ ਕੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧ, ਜੇ ਛੱਠ ਪਦਾਰਥ ਹਮਾਰੇ ਮਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਹਾਂ
ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਮੇਂ ਪਰਸਪਰ ਭੇਦ, ਅਵਿਦਿਆ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ, ਅਵਿਦਿਆ ਚੇਤਨ ਕੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧ।
ਹਾਂ
ਅਵਿਦਿਆ ਕਾ
ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ, ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ, ਤਿੰਨ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਔਰ ਮਾਇਆ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੇਦ। ਛੱਠ ਜੇ ਅਨਾਦੀ ਤਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਨੰਤ ਮਾਨੀਏ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਦਰ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਾਰੇ ਮਤ ਮੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਅਨਾਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਦੀ ਮੈਨੇ ਨਾ ਆਦੀ ਤੇ ਅਨਾਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਇਹ ਨੀ ਜੋ ਆਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਆਦੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗਾੜ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਈਸ਼ਵਰਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤ ਹੈ, ਆਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਚਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨਾਦੀਪਣਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਹੈ। जाते ता जीव ईश्वर विषय ता उक्त लक्षण की अति व्याप्ति बज्जर लेप है। वो कह रहा जी जीव ईश्वर है ना लक्षण किया अज्ञान का लक्षण किया सद विलक्षणम अनादि अज्ञानम कभी दोनों अनादि है इन्होंने लक्षण ना वो जो लक्षण इन्होंने अति व्याप्ति बज्जर लेप पक्का है। अब इसका समाधान करें ता अति व्याप्ति दोष के निवृत्त करने वास्ते ता लक्षण विषय ज्ञान निवृत्तकम जह जह पद भी हम कथन करे हैं। अंदा एक पद और लगा देंगे केड़ा ज्ञान निवृत्तक जेड़ा ज्ञान दे नाल निवृत्त हो जावे वो केड़ा हो गया ज्ञान निवृत्त कौन होगा अज्ञान अज्ञान ज्ञान दे नाल निवृत्त कौन होगा निवृत्त मतलब नष्ट अज्ञान ही होगा। ये पद ला देंगे जह पद भी हम कथन करे हैं तहा ऐसा पद लगाता तो फिर की हो गया ओदे नाल जेड़ा जीव ईश्वर है ना वो अज्ञान जेड़ा वो अलग हो गए क्यों अलग हो गए वो ज्ञान निवृत्त कम नहीं है वो ज्ञान निवृत्त नहीं हो जाते ठीक है ना उन्होंने पादियां निवृत्त हो गई तहा जतो ज्ञानम अज्ञानस्य एव निवर्तिकम ऐसा लक्षण करेंगे इस वचन करके श्री पंचपादाचार्य ने ज्ञान करके केवल अज्ञान मात्र ही निवृत्त कथन करी है। इतने पद करके अज्ञान की निवृत्ति शाली ज्ञान नाल होएगी बाकी किसी दिन बाकी संसार किसे चल जाएगा उन्होंने कहने का मतलब ये ना समझ लेना जिन्हों ब्रह्म ज्ञान हो गया उसके वास्ते संसार कितने दौड़ गया वो है ना समझ लेना भी जिन्हों ब्रह्म ज्ञान हो जाता ओदे वास्ते संसार कितने नष्ट हो जाता संसार नष्ट नहीं होता इन्हें च मिथ्या बुद्धि हो जाती भी सत नहीं है जैसे सपन च सानू पक्का विश्वास है वो सत नहीं है ऐसे जो ये संसार नू पक्का विश्वास हो गया तो फिर ये कौन मोल आएगा हाँ भगवान ने बार बार क्या है ना पदम पत्र मीमाम बसा तो पंजाबी च की क्या है जैसे जल में कमल अलेप जैसे जल दे विच रहिंदा हुआ कमल जल नू जल दे ना खराब नहीं हुंदा गिल्ला नहीं हुंदा ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा जदो ज्ञान हो जांदा जिन्नू भी वो संसार दे विच रहिंदा भी उन्हूं संसार दे नाल संबंध नहीं हुंदा हाँ जैसे जल में कमल अलेप है ना ब्रह्म ज्ञानी सदा निरलेप जैसे जल में कमल अलेप तो गीता दे विच पदम पत्र मीमांसा जैसे पदम ने कमल ओदा पत्तर सुका रहिंदा है ऐसे ओ आत्मज्ञानी पुरुष भी संसार दे विच ऐसे रहिंदे निवृत्त की होगा निवृत्त अज्ञान होगा संसार ने थोड़ी पहाड़ नदियां कुटिया ए पिंड रोटी खास जा पटियाला जा नाभा जा होर कोई शहर दौड़ जाएंगे किसी तिथी रहेंगे जिन्हू अज्ञान जिन्हू ज्ञान हो गया ओदे वास्ते ए प्रपंच मिथ्या हो गया सपन की तरह वो भावे विचे फिर जाए तो भावे चले जाए जंगल च जाके बैठ जाए उन्हू फिर कुछ हुण मान लो जिन्ने रज्जू नू देख लिया टार्च मार के जां दीपक लै के पी ए रस्सी है सप नहीं है ते पई रहे हुण उन्हू की तो कहूगी फिर उसका लेप नहीं हुंदा ना किधर गया अन्य की निवृत्ति कथन करी नहीं अन्य मने संसार की निवृत्ति मत समझ लेना खाली अज्ञान की निवृत्ति होगी करना की आप अज्ञान ही निवृत्त करना संसार में थोड़ी टाउन लगना समुंदरा जिन पूर्ण लग जाओ इन बंद कर दो समुद्र नहीं पूरा जाना पर समुद्र पूर्ण जिन्ना हौसला चाहिए ता गल बनती है एक टटीरी थी तुहानू कथा सुनाई है ना एक टटीरी सी समुद्र के कंडे उन्हें अंडे दिते सी थोड़ा हटवे एक बारी समुद्र की छाल आई जोर च वो अंडे बिच चले गए लै गया समुद्र अब टटीरी देखे भी ये की बन गया ਉਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਆਂਦੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੁੰਝ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਡੋਲ ਦੇ, ਚੁੰਝ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਡੋਲ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆਂਡੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਦਾ ਕਮਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਂਦੀ ਦੇਖ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਈ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੇਖਿਆ ਚੱਲ ਆਪੇ ਥੱਕ ਕੇ ਹਟ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਭਰਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਪੇ ਸੁੱਟਣ ਚੁੰਝਾਂ ਪਰ ਪਰ। ਬਾਕੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਟਟੀਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਪਕਸ਼ੀ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪਕਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਭਗਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆਂਡੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਹੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਰੁੜ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸਾਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ, ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਅਨਜਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੁੜ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਗਰੁੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਜੇ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਪੰਖ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ, ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਐਨੂੰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਮਾਰਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ? ਉਹ ਆ ਗਈ ਟਟਿਓਰੀ, ਟਟੀਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਆਂਡੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਭਜਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਗਏ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਲਣਾ ਹੀ ਨੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਚ ਰਲਣਾ ਹੀ ਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆਪਨੇ। ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਡਾਲੀ ਤੋੜਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਲੀ ਤੋੜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੈਂ, ਉਧਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ, ਤੇ ਸਪਨ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਏ 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 ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੋਗਦਾ ਕੈਸੇ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂ? ਸਾਹਿਬੇ ਜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਨੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬੇ ਜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਹਿਣ ਕਰ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਸ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਅਗਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਜੜ ਸੇ ਪੁੱਟਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਨੀ ਕੱਟਣਾ, ਜੜ ਸੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਬੁਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਵੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੜ ਕਿਹੜਾ? ਅਗਿਆਨ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ? ਅਗਿਆਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੀ। ਚਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਹਾਂ, ਅੰਨੇ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਕਥਨ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਆਦਿਕ ਭਾਵ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਨਿਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਜੀਵ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਈਸ਼ਵਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਨਿਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਪਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਨੇ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਔਰ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਭਾਵ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਜਾਤੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਸ਼ੇ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਿਵਿਰਤਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਤੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਉਕਤ ਲਕਸ਼ਣ ਕੀ ਅਤਿ ਵਿਆਪਤੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਤੇ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਕਾ ਸਦ ਵਿਲਕਸ਼ਣ ਅਨਾਦਿ ਅਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਨਿਵਿਰਤਕਮ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਲਕਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਦ ਵਿਲਕਸ਼ਣਮ ਅਗਿਆਨਮ ਅਨਾਦਿ ਗਿਆਨ ਨਿਵਰਤਿਕਮ। ਅਗਿਆਨ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸਦ ਸੇ ਵਿਲਕਸ਼ਣ ਹੈ ਔਰ ਅਨਾਦਿ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਸੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਾ ਲਕਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਿਆਨਮ ਜਹ ਲਕਸ਼ਣ ਸਿੱਧ ਭਇਆ ਅਥਵਾ ਅਨਾਦਿ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਊ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵਿਛੇਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਈ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਨਾਦਿ ਉਪਾਦਾਨਮ। ਅਨਾਦਿ ਉਪਾਦਾਨਮ ਗਿਆਨ ਨਿਵਰਤਿਕਮ ਅਗਿਆਨਮ। ਜਹ ਦਵਿਤੀਆ ਅਗਿਆਨ ਕਾ ਲਕਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਤਹਾਂ ਇਸ ਲਕਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨਾਦਿ ਪ੍ਰਾਗ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤਿ ਵਿਆਪਤੀ ਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਦਾਨ ਜਹ ਪਦ ਕਥਨ ਕਰਿਆ। ਉਪਾਦਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਾ? ਉਪਾਦਾਨ ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਘਟਾਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਭੂਤ ਮ੍ਰਿਤਿਕਾ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤਿ ਵਿਆਪਤੀ ਕੇ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਦਿ ਜਹ ਪਦ ਕਥਨ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਨਾਦਿ ਤਥਾ ਵਿਵਰਤ ਉਪਾਦਾਨ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤਿ ਵਿਆਪਤੀ ਕੇ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਨਿਵਿਰਤਕ ਜਹ ਪਦ ਕਥਨ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰਿਣਾਮ ਉਪਾਦਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਈਕ ਵਾਦੀ ਗਿਆਨ ਕੇ ਅਭਾਵ ਕੋ ਅਗਿਆਨ ਕਹੇ ਹੈ। ਅਬ ਅੰਧਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਅੰਧਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਘੁੱਪ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਘੁੱਪ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾ ਅਭਾਵ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਭਾਵ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਅਗਿਆਨ ਕੂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ? ਔਰ ਕਈਕ ਵਾਦੀ ਗਿਆਨ ਕੇ ਅਭਾਵ ਕੂ ਅਗਿਆਨ ਕਹੇ। ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਿੰਨੋ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਕੂ ਭਾਵ ਰੂਪਤਾ ਮਾਨੀ ਹੈ ਇਤੀ। ਅਬ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੂ ਕਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਜਾਣਾਮੀ। ਦੇਖੋ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਜਾਣਾਮੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ ਹੂੰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ अज्ञान विषयक प्रत्यक्ष अनुभव सर्व प्राणियों को होवे है, ये सारे नु हो रहा है, ठीक है ना। जाते ता अज्ञान विषय एक तो जह प्रत्यक्ष ही प्रमाण है और दूसरा सुरति स्मृति भी प्रमाण है, ये तो प्रत्यक्ष हो गया सारे नु, सुरति स्मृति भी अज्ञान नु फिर कह रही है। ता सुरति है तदेया योग अनुगत अपश्यन देव आत्मा शक्तिम स्वगुण स्वगुण ही निगूढ़ आत्मा निगूढ़ की अर्थ निकले था अंदर ते ध्यान योग ते ध्यान योग अनुगत अपश्यन देव आत्म शक्तिम स्वगुण ही निगूढ़ अर्था अर्थ जे है, चलो इदा हिंदी जी समझ लो, अर्थ जे है काल स्वभाव वादिक कारणों विषय नाना प्रकार के दोषों का विचार करके जगत के कारण निश्चय करने वास्ते ब्रह्म के ध्यान परायण हुए ते ब्रह्म वेता पुरुष देव आत्म शक्ति को ही जगत कारण रूप करके देखते भय। देवात्म शक्ति माने आत्मा नु, वो जेड़े महापुरुष सी ऋषि मुनि वो ब्रह्म दे ध्यान विच बैठे उन्होंने की अनुभव होया, उन्होंने की अनुभव होया, अनुभव ए होया ए जेड़ा आत्मा है यही ब्रह्म रूप है। ये की क्या देखो देव आत्म शक्ति को ही जगत का कारण रूप करके देखते भय, अपने आप नु ही अपने आप नु माने शरीर नु नहीं आत्मा नु देखते भय, ये जड़ी आत्मा है यही ब्रह्म स्वरूप है यही जगत का कारण है। जो अज्ञान रूप शक्ति अपने सत्व आदि गुणों करके निगूढ़ है, सत्व आदि गुणों करके निगूढ़ माने छुपी हुई है, इस सुरती का अर्थ
अज्ञान वाले छुपी हुई है,
हाँ अज्ञाने ना वृत्तम ज्ञान तेना मुहि हंति जंतवाह, अज्ञान के द्वारा टकी हुई है, ऐसे वास्ते करना।
हाँ
जी
ताही
के कारण है जो शक्ति ढकी रखी उन्हें उधर जान ही नहीं दिंदा, हुण शीशा है शीशे दे धूल जमी पई है ते आपां उच मुंह देखांगे ते दिख लेगा, उन्हूं पहले साफ करना पड़ेगा, तो जब साफ करांगे फिर देखांगे तो फिर जैसा है ऐसा दिखाई देगा। यही गल अज्ञान दा, अज्ञाने ना वृत्तम ज्ञानम तेना मुह्यंति जंतवा, भगवान कृष्ण गीता विच कहिंदे आ अज्ञान दे द्वारा ज्ञान ढका हुआ है ते जीव प्राणी उहदे नाल मोहित हो रहे हैं। जैसे सूरज बदलना ढक गया तो सूरज का की बिगड़ गया, बदलना बदल कितों बने सूरज तो बने, ये परपंच कितों बनया ब्रह्म तो आत्मा तो, आत्मा नु इन्हें ढक लिया। अंदर अज्ञान का की लक्षण माया का की लक्षण है, अंदर स्वासरे मोहित करी माया, जेदे आसरे है ना उन्हों मोच डाल देता, स्वासरे मोहित करी माया, ये माया का लक्षण कर दिया। देखो दे रहे अज्ञाने ना वृत्तम ज्ञान तेना मुह्यंति जंतवाह, इस गीता है ये गीता का श्लोक है, ज्ञाने ना तो तद्ज्ञानम जेशम नाशितम आत्मनः तेषम आदित्य ज्ञान बज ज्ञान प्रकाशयति तत्परः। इस इतना टुकड़ा मैं तुम्हें अपने को सुना रहा, ये ना लभ्यो इत्थे भी है अर्थ जे है जिन जीव अर्थ समझ लेना ठीक से, अर्थ जे है जिन जीवों का ज्ञान अज्ञान करके आवृत हुआ है, की कह रहे हैं जिन जीवों का ज्ञान, जिन जीवों का ज्ञान अज्ञान करके आवृत है हुआ है, आवृत में टका हुआ है, ठीक है ना, ते जीव जिस अज्ञान कृत आवरण करके संसार को ही प्राप्त हुए हैं, वो बार बार संसार नु मतलब जन्म मरण दे चक्कर
च,
संसार नु मतलब
जिहदा ज्ञान अज्ञान नाल
ढकया है
वो जन्म मरण दे
चक्कर च है,
उन्हें संसार नु मान लिया, जिहदे ज्ञान अवधा नंगा कर लिया
हाँ
अज्ञान दूर करके वो बच गया,
वो मुक्त है,
मुक्त है वो, थोड़े नहीं है ये चल नहीं बस।
ਪਰ ਥੋੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ?
ਆਪਾਂ ਸਹਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੁਰਾਉਣ ਦਾ।
ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਨ ਜੀਵੋ ਕਾ ਗਿਆਨ,
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਕਤੀ ਆਈ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ ਜੀਵੋ ਕਾ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਵਰਿਤ ਹੁਆ ਹੈ, ਸੋ ਜੀਵ ਜਿਸ ਅਗਿਆਨ ਕ੍ਰਿਤ ਆਵਰਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਧੱਕ ਲੈਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨੀ ਹੋਜੇਗਾ? ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨੀ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ 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 ਉਡਾਓ,
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜੈਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੁਕਤ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਨੀ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ਣ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ। ਉਹ ਬਸ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮਣੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁੱਜਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੱਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਰਚ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਵੈਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੜਦਾ, ਉਹ ਹਟਾ ਦੋ। ਉਹ ਹਟੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ, ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨੀ। ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਅੰਜਨ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਜਨ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਾਜਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਰਮਾ ਕਹਿ ਲੋ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਅਬਿਨਾਸ਼, ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ, ਐਸਾ ਐਸਾ ਕੁਛ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨੀ? ਔਰ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੁਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਪੁਰਸ਼ੋ ਕਾ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਜਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤਕ ਅਭਿੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੀਰੇ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਦੋ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ,
ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ